आगे फिर नमाज़ों की बात आती है। हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बा अदब खड़े रहा करो। अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल ही सही या सवार ही सही। हाँ, जब अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो, जिस तरह इसने तुम्हें इस बात की तालीम दी जिसे तुम नहीं जानते। जो लोग तुम में से फौत हो जाए और बीवियाँ छोड़ जाए और वसीयत कर जाए कि इनकी बीवियाँ साल भर तक फायदा उठाएं, इन्हें कोई ना निकाले। हाँ, अगर वो खुद निकल जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो वो अपने लिए अच्छाई से करें। अल्लाह ताला गालिब और हकीम है। तलाक वालियों को अच्छी तरह फायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल्लाह ताला इस तरह अपनी निशानियां तुम पर जाहिर फरमा रहा है ताकि तुम इनको समझो। ये थी आयत नंबर 238 से 242। इनका उन्वान है कि नमाज दीन का खुलासा है। नमाज हकीकत में दीन का खुलासा है। एक मोमिन की जिंदगी की वो तस्वीर कशी करती है नमाज, कि जब वो तस्वीर फैला लें तो वो पूरी जिंदगी बन जाती है। आप कह सकते हैं कि नमाज का असर इंसान की पूरी जिंदगी में दिखता है। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा जुमला है कि हाफिज अलस्सलातिल वुस्ता वकूमु लिल्लाहि कानितीन, लेकिन यहाँ मुख्तसर तौर पे नमाज के तीन अहम अज्जा को बयान कर दिया गया। पहली बात यह कि नमाज का पांच वक्त फर्ज होना, दूसरी बात कि नमाज एक काबिल एहतमाम चीज है, और तीसरी बात क्या है कि नमाज असल में उसकी हकीकत क्या है, आजजी। अल्लाह ताला ने जहाँ तलाक के मौजू के बाद नमाजों का जिक्र क्यों किया, इसलिए कि अमूमन जब घरों में झगड़े उठते हैं ना तो सबसे ज्यादा मुतासिर नमाजें होती हैं। नमाज पढ़े भी तो याद ही नहीं रहता क्या किया, दिमाग तो खाली हो चुके होते हैं इधर की बातें सुन के उधर। और मैं सोचती हूँ कि दो लोगों का तो मामला होता ही है, सारा खानदान क्यों हरकत में आ जाता है? हर फोन कॉल पे उस कपल को क्यों डिस्कस किया जाता है? शादियों में खुसर पुसर उनके बारे में क्यों होती है? कानों में बातें क्यों की जाती हैं? क्या हमारे पास इतना वक्त है? क्या हम करने वाले काम कर चुके? क्या इस्लाम हमें ये मेयार नहीं सिखाता कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के लिए दुआ कर दो? इस्लाम तो वो मुआशरा सिखाता है कि किसी ने अगर किसी की बात को सुन के बिला सोचे समझे आगे कर दिया तो अल्लाह ताला कहते हैं उसके जहन्नमी होने के लिए ये बात काफी है। तो लिहाजा हम सबको इसके अंदर अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब हम नमाजें पढ़ते हैं तो हमारी नमाजों का क्या हाल होता है। क्या हमें अपनी फैमिली पॉलिटिक्स के साथ इतना शगफ तो नहीं है कि हम अपनी कई नमाजें कुर्बान कर चुके हों? फिर यहाँ देखिये, नमाज वसत की बात हुई, सलातुल वुस्ता, इससे पता चलता है कि नमाजें पांच हैं, क्योंकि सलातुल वुस्ता जो है वो दरमियान की नमाज असर की है, और सलात का लफ्ज जो है ये कम अज कम तीन से, तो तीन के बाद चार का लफ्ज एक ऐसा होता है कि जिसके बीच की नमाज फिर वुस्ता होगी। सिर्फ इस लफ्ज से नमाज पांच नमाजें जो है ये साबित होती हैं। फिर अगली चीज इसमें नमाज की मुहाफजती हिफाजत। अब देखिए कि हम कितनी चीजों की हिफाजत करते हैं। माल की हिफाजत सबसे ज्यादा करते हैं, अपने जेवरात की हिफाजत करते हैं, फिर अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, अपने जिस्म की हिफाजत करते फिरते हैं, अपने कपड़ों की हिफाजत करते रहते हैं। इन सारी हिफाजतों को एक पलड़े में डाल दीजिए और दूसरी तरफ आप सोचिए कि नमाज की हिफाजत कितनी करते हैं, जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया हाफिजू, हिफाजत करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, वक्त पे पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो, इरादे के साथ पढ़ो, कोई ऐसी नमाज ना हो कि सिर्फ जुबान से पढ़ते जाओ। कितनी हिफाजत है! आज हमें अपनी नमाज से कितना शगफ है। हमने वही नमाज तो नहीं याद रखी हुई जो हमारी खाला जी ने या कोई कुरान पढ़ाने वाली थी, उन्होंने आज से 20-25-30 साल पहले पढ़ा दी। हम नमाज के बारे में कभी गौर नहीं करना चाहते। ये वो मौजू ऐसे समझते हैं कि जिसके बारे में अब बात करना ही खत्म, क्लोज दिस चैप्टर। हालांकि बदलते वक्त के साथ कितना कुछ बदला, कितनी चीजें हमारे सामने आई, लेकिन नमाज क्यों वही 20-25 साल पहले की है? इस मौके पर हम सबके लिए एक क्राइटेरियन है, मैं आप सबको भी दावत दूंगी, अपने आप को भी, कि हमें एक दफा अपनी नमाज को रिवाइज करें, खुद को सुना के देखें, किसी पढ़े लिखे को सुना के देखें, और फिर महसूस करें कि जो गलतियां हैं उस वक्त अल्लाह की निगाहों में मेरा क्या मोल रह जाता होगा जब मैं दिन में पांच बार उसको गलत नमाज सुनाती हूँ। हम बस शर्म और झिझक की वजह से नमाज ठीक नहीं करते कि लोग कहेंगे लो इसको इतनी बड़ी हो गई अब नमाज नहीं आती। तो आप उस दिन की शर्मिंदगी को तो सोचिए जिस दिन पहला सवाल नमाज के लिए होगा, अव्वलुमा युहासिबु बिही अल्अब्द यौमल क़ियामा, क्या होगा? अस्सला, क़ियामत के दिन पहली चीज जिसका हिसाब होगा वो नमाज होगी। फिर इसमें आप देखिए कि चले नमाज के लफ्ज और उसके एक्शंस ये तो एक चीज है ही, लेकिन एक चीज जो आज हमारी नमाजों में मिसिंग है वो क्या है? आजजी, खुशू। अल्लाह ताला बार बार इसका जिक्र करते हैं कि इंसान जो नमाज पढ़े तो उसके बाद उसकी कैफियत क्या हो, कि वो फील करे कि मैं कैसी बड़ी जात के सामने खड़ा हूँ कि जिसके आगे मेरी कोई ताकत नहीं। आज ही सिखाती है, लेकिन हमारा हाल क्या है कि नमाज में तो कहते हैं कि वताला जद्दू का, और सारी लड़ाइयाँ सारे झगड़े बाद में हमारी अपनी शान के हैं, अपनी जात के। इसलिए नमाज के जरिए अपने दिल के अंदर आजजी भी पैदा करनी चाहिए। इन सारी चीजों को करने के लिए, नमाज हो या तलाक या इद्दत या किसी के हकूक देने हो, अल्लाह ताला ने कहा कि ये सारी चीजें किन के लिए हैं? एक दूसरे की बातें करके फरमाया हक्कन अलल मुत्तकीन, तकवा है वो चीज़ जो इंसान को अपनी माशी और माशरती और इबादत की जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने की दावत देती है। अल्लाह ताला हमें मजीद नमाजों की इसलाह करने वाला और अपने अंदर तकवा को पैदा करने वाला बना दे। अब इसके बाद कुछ ऐसा वाक्या शुरू होते हैं, मैं आपको पहले उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे के फिर आगे चलती हूँ। सूरत, आपको पता है कि बकरा जो है ये मदनी सूरत है, और मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफारे मक्का के साथ एक जंग हुई थी। आप कह सकते हैं कि मदनी दौर जो था वो जंगों का दौर था, मक्का में ऐसा कोई मामला पेश नहीं हुआ था। अब जरूरत थी इस बात की कि मुसलमानों को पहले से थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया जाए कि देखे मक्का में तो अब हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन तुम मदीना में जा रहे हो तो वहां तुम्हें जंगे आएंगी। तो बनी इसराइल के दो वाक्यात हमारे सामने रखे जा रहे हैं पारे के अख्तिताम पे, ताकि हम अपने लिए अमल भी लें और उस दौर के लोगों के लिए खास तौर पे ये एक बहुत बड़े अमल की चीज थी। अलम तरा इल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूब हज़र अल मौत, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वकातिलू फी सबीलिल्लाहि वालमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे, बस अल्लाह ताला इसे बढ़ा चढ़ा कर अता करेगा। अल्लाह ही तंगी देने वाला और कुशादगी करने वाला है, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये थी आयत नंबर 243 से 245। इसका उन्वान है अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात का आना फजल के दरवाजे का खुलना है। मगर कितने लोग हैं इसको सोचते हैं, जब अल्लाह के रास्ते में आपको कोई मुश्किल आए ना तो समझ लें कि आपके ऊपर बाबुल फजल खुल गया, अल्लाह की रहमतें होने लगी हैं। ऐसे वक्त में फिर मुश्किलात इंसान के लिए मुश्किलात नहीं रहती। असल में यहाँ अल्लाह ताला मक्का से सताए हुए लोगों को जो मदीना में आए, अब उनको बता रहे हैं कि देखो एक वक्त आएगा कि तुम्हें भी उसी तरह जंगें करनी पड़ेंगी जैसे बनी इसराइल को मौका मिला गया था। और इसमें खास तौर पर एक वाकया आता है कि बनी इसराइल का एक दौर ऐसा गुजरा कि अपने जवाल के दौर में थे, और जब कौमें जवाल याफ्ता हो जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला नॉन मुस्लिमों को दावत देता है कि आओ इनको मारो पीटो, ये सर जो अल्लाह के आगे नहीं झुकते अब इनको तुम खत्म ही कर दो। और मुसलमान के ऊपर ये अल्लाह का अजाब होता है जो बजाहर लगता है कि इंसानों की तरफ से होता है। उस दौर में एक नबी थे इस्माइल, उन्होंने इनको कहा कि देखो तुम्हें जो शिकस्त हो रही है इसकी वजह ये है कि तुम्हारा अल्लाह पर यकीन कम है। अगर तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने बुतों को तोड़ो, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीकों को छोड़ो, अल्लाह ताला दुश्मनों को फलस्ती जो होते हैं तुम्हें उनसे रहाई दे देगा। इन्होंने थोड़ा सा किया भी, लेकिन हुआ क्या कि चूंकि अभी यकीन पूरा नहीं था ना, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया और एक ऐसा वक्त आया कि ये मौत के डर से भागने लगे। अल्लाह ताला ने इनको बता दिया कि मौत से कोई नहीं बच सकता, यहाँ इनफिरादी मौत से बचोगे लेकिन तुम्हें रास्तों में कौमी तौर पे मरना पड़ेगा। हमारे लिए इसमें अमल की बात यही है कि जो मौत का वक्त है वो मुकर्रर है और वो आके रहेगा। असल बात यह कि मौत से बचने की बजाय मौत की तैयारी कर ली जाए, उसके बाद के लिए इंसान अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखे। फिर उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात कर्ज़े हसना की हुई, इसलिए कि जब भी कभी जिहाद की बात आती है, अल्लाह के दीन को फैलाने की बात आती है, तो उस वक्त माल की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को कहा कि अगर तुम मेरे रास्ते में माल लगाते हो तो ये तुम मुझे कर्ज दे रहे हो। किसको? अल्लाह को, अर्रज़ाक को, अल मालिक को, जिसके हाथ में जमीन और आसमान के खजाने हैं। हाँ, उसको कर्ज देना है। कर्ज हसन होता ही ये है कि बंदा अल्लाह की रजा के लिए देता है, उसके बाद किसी बदले की उम्मीद नहीं है। वो खर्च करना जो अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन पर लगाया जाए और खालिस अल्लाह के लिए, कोई मुफाद ना हो, अल्लाह इसको अपने जिम्मे कर्ज कहता है। अल्लाह अकबर, कि मैं इसको इतना बढ़ा के दूंगा कि अदआफ़म मुदाफा, दुगने का दुगना इसको और बढ़ा के दूंगा। और आप देखिए कि जिसको इस बात का यकीन आ जाता है, फिर वो उन नोटों को अपने नोट नहीं कहता जो उसकी जेब में है या उसके बैंक में, वो उनको कहता है जो वो अल्लाह के नाम पे अल्लाह की किसी जगह में दे चुका है। लेकिन ये सोच कब बदलती है? जब शऊर आता है, और शऊर के बगैर तो इंसान को बाज़ दफ़ा $1 या 1 रुपया भी अपनी ज़ात पे अल्लाह के लिए खर्च करना या अल्लाह के रास्ते में खर्च करना मुश्किल लगता है। अल्लाह के नबी के दौर में सहाबे कराम जो थे वो ऐसी आयतों को सुन के बेचैन हो जाया करते थे। तीसरे पारे में हम देखेंगे कि कसरत से इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जिक्र आएगा। खर्च के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यहाँ जो रास्ता है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला का दीन जो है वो नुमाया हो। दुश्मन सरहदों पर आ चुके हैं तो उन सरहदों की हिफाजत, और दुश्मन अगर जहनी सरहदों को पामाल करने लगे हैं तो जहनी सरहदों की हिफाजत के लिए अल्लाह के दीन को बुलंद करना। आज हम सोचें हमारा कितना वक्त लगता है, हम तो साल में 100 में से 2.5% दे के भी कहते हैं कि उसमें से भी कुछ बच जाए। कितने दें, क्या उसमें मोतियों का वजन भी दें, क्या उसमें डोरियां भी देंगे। याद रखिए, जो कौम अपना माल अल्लाह के रास्ते में नहीं लगाती वो नहीं बचती। दुश्मन पीस के रख देगा, वो माल दुश्मन का है, वो आपका नहीं है। पीछे भी हमने देखा था कि फिर ऐसे लोगों के माल दुश्मन ले जाते हैं, फिर वो हमले करते हैं तो वो माल उनके हाथ आ जाता है। और अगर वही माल अल्लाह के रास्ते में दिया होता तो अल्लाह के गजब और गुस्से की आग को वो ठंडा करता, तो वो इंसान के लिए बचता। तो वही बात है कि तू बचा, बचा के न रख इसे। ये बचाने की चीजें नहीं है, जान माल औलाद अपनी जवानियां ये अल्लाह के रास्ते में दे देंगे तो बच जाएंगी। दुआ करें कि दुनिया से जाने से पहले रब के खाते में डाल दें ये सारी चीजें। मौत के वक्त जब इंसान फरिश्ते को देखता है तो तमन्ना करता है कि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, सूरत मुनाफिकून की आखिरी आयतें, क्यों नहीं मुझे थोड़ी सी मोहलत दी, थोड़ी सी मुद्दत दो, क्या करोगे। फसद्दका वकुम मिन सालिहीन, सदका करूंगा और नेक बन जाऊंगा। क्योंकि यही दो चीजें हमने पोस्टपोन की होती हैं बुढ़ापे के लिए। अल्लाह ताला हमें यहाँ के माल से ज्यादा वहाँ के माल की मोहब्बत अता फरमा दे। और आखिरी बात इस हिस्से में जो हमने देखी और वो क्या थी, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, अल्लाह का फजल है। देखिए, ईमान के रास्ते में, दीन के रास्ते में जब मुश्किलात आती है ना, तो ये कोई महरूमी की बात नहीं होती, ये अल्लाह के फजल के दरवाजे खुलते हैं आपके ऊपर। अल्लाह ताला आपको कबूल कर लेता है, अल्लाह ताला आपको अपने नाम लिख लेता है अपने दफ्तरों में कि अब ये मेरा बंदा है और अब इसके बाकी काम मेरे जिम्मे होंगे। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दे कि हम भी वो काम करें कि अल्लाह के फजल के दरवाजे हम पर खुलने लगे। अलम तरइल मलई मिम बनी इसराइल अमिम बादी मूसा, क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए और बच्चों से दूर कर दिए गए, फिर भी जब इन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए, और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे, भला इसकी हम पर कैसे हुकूमत हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, हमको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगुजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बर्तरी भी अता की है। बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वकाल लहुम नबीयुहुम, इनके नबी ने इनसे कहा, इसकी बादशाहत की जाहरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते से उठाकर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। ये थी आयत नंबर 246 से 248। इनका उनवान है, अल्लाह के फैसले वसत और इल्म की बुनियाद पर होते हैं। अल्लाह किसको चुनता है, जो वसीउ नजर हो, जो नैरो माइंडेड ना हो, जो ओपन माइंडेड हो, और इसी तरह अल्लाह ताला उसको चुनता है जो अल्लाह की नज़र में साहिब इल्म होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 साल के बाद बनी इसराइल जो थे वो अपने पड़ोसी मुशरिक कौमों से मغلوب हो गए। अब उनसे मغلوب हुए, उनके तौर तरीके अपनाने लगे, उनके रस्म व रिवाज इनकी जिंदगी में आने लगे। जब दुश्मन को पता चलता है कि फलां मुसलमान मुझसे इतना इम्प्रेस है, तो वो फिर इस खुशी में उनके ऊपर हमला कर देते हैं कि फिर तो ये हमें खुशी खुशी कबूल करेंगे। अब ये मामला हुआ तो अब इनको एहसास हुआ कि ये क्या हुआ। अब फौरन इन्होंने देखिए कि अपने लीडर को इसकी वजह समझा, कहने लगे कि हमारे ऊपर कोई और लीडर आ जाए, कोई बादशाह बन जाए। जब भी किसी कौम पे जवाल आता है ना, तो वो अपनी नाकामियों और अपनी महरूमियों की वजह अपने हुक्मरानों को गर्दानते। अगर बुरा ना मनाएं तो आज के दौर में भी देखिए कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मशगला क्या है कि हुक्मरानों पे बातचीत करना, सियासत। घरों में बैठे हैं तो सियासत, सड़कों पे बैठे हैं तो सियासत, और कोई एक को गाली देता है, कोई दूसरे को गाली देता है। हालांकि बात यह है कि हुक्मरान कुछ भी नहीं होते, हुक्मरान अवाम का आईना होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक रिवायत का खुलासा है कि जैसे तुम हो गए वैसे हुक्मरान तुम पे आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि शायद हुक्मरानी बदल जाएगी तो हम ठीक होंगे, हालांकि हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता, ये चेहरे बदलते हैं, निजाम जब तक नहीं बदलेगा बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला ने कह दिया, आगे आप पढ़ेंगे जाके, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे भी हालात बदले तो हमें अपनी हालत बदलनी पड़ेगी, हुकूमत के बदलने से कुछ नहीं होगा। और वही बात हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, तालूत को आपके लिए मुकर्रर कर देते हैं। अब तालूत जो थे वो सेहतमंद थे, अल्लाह ताला ने उनको इल्म भी दिया था, لیکن گھر سے غریب تھے، قوم نے پھر پکڑ لیا کہ یہ غریب شخص ہمارا حکمران کیسے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ظاہر میں پھنستے ہیں نا، ان کو ہمیشہ ظاہری ہی چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت شمائل جو نبی تھے، انہوں نے ایک امتحان لینا چاہا کہ یہ لوگ خامخواہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، جہاد کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی باتیں، تو جب تک ان کے اپنے اندر سے تعصب اور نافرمانیاں نہیں نکلیں گی اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ اور اسی طرح سے پھر ایک ایسا واقعہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے، ایک ادنا سپاہی تھے اپنی فوج کے، لیکن جب کسی بندے کے اندر خوبی ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو 7 پردوں میں بھی چھپا دیں، اللہ اس کی خوبی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، سورج نکلتا ہے نا، آپ اس کے آگے جتنے مرضی پردے ڈال دیں، سورج اپنی روشنی دکھا کے رہے گا۔ اسی طرح انہوں نے ایک ایسا مارکا اس میں انجام دیا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہت بھی دے دی۔ اگلے حصے کو دیکھیں گے۔ فلما فصل تالوت بالجنود، جب تالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت تالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم والا ہے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 249 سے 252، ان کا عنوان ہے امتحان ساتھیوں کی ہمت کو جانچنے کے لیے۔ اب تالوت سمجھدار تھے، ان کو لگا کہ یہ خامخواہ اس وقت دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اصل میں یہ کریں گے نہیں۔ انہوں نے ایک امتحان لیا، اور وہ کیا کیا کہ دیکھو یہ جو راستے میں پانی آ رہا ہے اس کو تم تھوڑا پیو گے تو ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سن رہے تھے ابھی ترجمے میں، اصل میں یہ امتحان تھا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب معاملہ پڑتا ہے تو اس وقت کتنے لوگ پڑتے ہیں، ہزاروں میں سے چند سو۔ کہتے ہیں صرف 300 کچھ لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں 600 تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، باقی سب پانی پی چکے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، کسی مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ افراد مشکلات کو سہنے کے لیے اور سردار کی اطاعت کا مادہ ہو۔ دو چیزیں ان آیتوں میں امت مسلمہ کو سکھائی گئیں، ایک کیا ہے، مشکلوں پہ صبر کرنا، جم جانا، رابطو مرابطہ، اور دوسرا کیا ہے، امیر کی اطاعت، لیڈر کو فالو کرنا۔ یہ دو چیزیں جب امت میں آ جاتی ہیں تو امت بہت بھاری ہو جاتی ہے، اور جب یہ دو چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ نکلتی ہے۔ تالوت نے جب اپنے ساتھیوں کو پانی کا حکم دیا، اصل میں ان کا امتحان مقصود تھا۔ بائبل میں آتا ہے کہ 600 لوگ ایسے نکلے جنہوں نے پانی نہیں پیا، لیکن روایات میں آتا ہے 300 کچھ لوگ تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جتنے لوگ پھر غزوہ بدر کے اندر کامیاب ہوئے تھے۔ اگلے ہی سال غزوہ بدر ہونے والی تھی اور مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 مشرکین تھے۔ یہ واقعہ سنا کے پہلے ہی مسلمانوں کے دل جما دیے گئے کہ غم نہ کرنا، اگر تالوت کے ساتھ 313 لوگ جو تھے کامیاب ہو سکے تھے تو کل انشاءاللہ تم بھی ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تو ان کا پانی پینا بھرا پیٹ جو ہے وہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کرنے دیتا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو دشمن بہت مضبوط لگا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب امت کھانے پینے میں مگن ہو جاتی ہے نا، جب امت گھر بنانے اور زندگی کے ساز و سامان جمع کرنے میں رہتی ہے نا، تو اس کو چھوٹا دشمن بھی بہت بڑا لگتا ہے، نکاہت آ جاتی ہے نا۔ کمزور کندھوں پہ آپ چھوٹی بھی چیز رکھے تو بوجھل لگے گی، لیکن وہ قومیں جو جاگتی ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جن کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، جو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے جیتے ہیں، जिनके पास एक उम्मत बन के जीने का मिशन होता है, वो बड़े बड़े दुश्मनों को भी देख के कहते हैं हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, हमारा अल्लाह हमको काफी है, लिहाजा वो बहुत सारे साथ चलते, उनका भी इंतजाम किया जाता, तो उस भीड़ से तो बेहतर था कि 313 लोग हों, और उन्होंने ही फिर अल्लाह के हुक्म से इस तरह से वहां जाके जंग की कि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता कर दी। जो सबक है इस वक्त वो इसमें सब्र और इताअत का है, जितना सब्र और इताअत आएगी उतनी ही इंशाल्लाह दुश्मन से इंसान को फायदा होगा, और अल्लाह की मदद भी ऐसे ग्रोह पे आती है। लोगों ने तो सिर्फ ये बताना होता है कि अल्लाह हम तेरे रास्ते में निकलने को तैयार है, बाकी काम अल्लाह की जात खुद ब खुद करती है। आखिरी चीज जिस पे पारे का इख्तिताम है वो क्या है कि अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ से हटा देता है। होता क्या है कि जब किसी को एक खास अरसे तक इकतदार मिलता ही रहता है ना, तो उसकी तबीयत में घमंड आने लगता है, और घमंड के नतीजे में तकब्बुर आता है, तकब्बुर के बाद लोगों पे जुल्म होता है। अल्लाह ताला इस जुल्म को बचाने के लिए थोड़े से अरसे के बाद फिर एक को उठा के दूसरे को ले आता है। असल में ये कमजोर जमात का इम्तिहान होता है कि कल तक जो ताकतवर जमात थी और तुम उस पर तनकीद करते थे, अब आओ तुम जरा मैदान में आओ और हम देखते हैं कि तुम क्या करते हो। और ये दोनों चीजें इम्तिहान है, किसी को हुकूमत मिल जाए या किसी से हुकूमत छिन जाए, ये हर चीज इम्तिहान है। हम में से हर एक इस दुनिया में कमरा इम्तिहान में बैठा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन पर्चों में कामयाब कर दे, हमें अपनी जात के मुहासबे की फिक्र पड़ जाए कि क्या मेरा मुकाम है अल्लाह की निगाहों में, क्या जिंदगी का यही मकसद है जो मैंने समझा, क्या यही था जिंदगी, क्या इसी को देखना था। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ निशानियों की बात की है दोबारा, अगर आप आयत नंबर 248 के आखिर में देखें, फरमाए इन्न फी ज़ालिका लआयतल्लकुम, ये एक निशानी होती है, इन निशानियों को तस्कीर बिल अय्याम इल्ला कहते हैं, गुजरे हुए वक्तों में से जो निशानियां ली जाती हैं, ये वाकया उसकी बेहतरीन मिसाल है। क्या आज ये निशानी हम दुनिया में नहीं देखते, क्या आज मुसलमान लाखों में मौजूद है, करोड़ों में मौजूद है, लेकिन उनका रोब नहीं, उनकी ताकत नहीं, आज एक जमीन के टुकड़े के लिए नस सदी से ज्यादा हो गए लड़ते झगड़ते हुए, अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या ये निशानी हमें नहीं समझ आती गज़वे बदर में कि कैसे अल्लाह ताला ने फौरन के फौरन फैसला कर दिया? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आंख दे जो हमें अल्लाह की निशानियों को समझने वाला और इसको मानने वाला बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।